जमानों की उमंग बाब नंबर 21 बैत हसदा। और कौमी कौंसिल यरूशलम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पज मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। किसी खास मौके पर उस हौज का पानी हिलाया जाता। अवाम का यमान था कि जब पानी हिलाया जाए तो जो कोई पहले हौज में उतर जाए उसकी खा कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो जरूर शिफा पा जाएगा। उनका यह भी यमान था कि पानी को हिलाने वाली माफौकुल फितरत ताकत है, इसलिए उस हौज की तरफ लोग जौक दर जौक पहुंचते रहते थे ताकि जब पानी हिले तो पानी में पहले कूदकर शिफा पाए। मगर अफसोस कि जब पानी हिलता तो लोग इस तरह पानी की तरफ बेतहाशा भागते कि बास कमजोर लाचार बच्चे, खवातीन और नातवां मर्द एक दूसरे के पांव तले कुचले जाते। बास तो हौज के नजदीक भी ना पहुंच पाते। बास जो पहुंच जाते वो किनारे पर ही दम तोड़ जाते। उस हौज के किनारे 5 बरामदे बनाए गए थे ताकि बीमार दिन की गर्मी और रात की सर्दी से महफूज रह सके, क्योंकि बास शिफा की उम्मीद में रातें भी वहां गुजारते थे ताकि जब पानी हिले तो शिफा पाए। दिन निकलता था, दिन गुरूब हो जाता था। यूं वो बेसूद वाहन बरसों से पड़े थे। यसू भी यरूशलम में था, अपने ज्ञान ध्यान में मगन तन्हा उस हौज पर आ निकला। उसने देखा कि बदनसीब, दुखी, लाचार, बीमार इस वाहिद उम्मीद पर यहां पड़े हैं कि शिफा की कोई राह निकल आए। उसने चाहा कि अपनी शिफाई कुव्वत को अमल में लाकर सबको शिफा बख्श दे। मगर यह सबत का दिन था। लोग हैकल में इबादत के लिए जा रहे थे और वो जानता था कि अगर सबको शिफा दे दी तो यहूदी हसद से भर जाएंगे और उसकी खिदमत अधूरी रह जाएगी। जितने बीमार वहां पड़े थे वहां उन बीमारों में उसने एका बीमार पाया जो सबसे ज्यादा आफतजदा था। ये शख्स अपाहज था जो 38 साल से वहां हौज पर पड़ा हुआ था। उसकी ये बीमारी उसके अपने गुनाहवान के सबब थी। उसका कोई अजीज या रिश्तेदार भी ना था। ऐसे मालूम होता था जैसे खुदा ने भी उसे तर्क कर दिया हो। जब पानी हिलने की तवक्को होती तो जिस किसी को उस पर तरस आता उसे बरामदे में छोड़ आता, लेकिन जब पानी हिलता तो ऐन उस मौके पर वहां कोई न होता जो उसे पानी में उतारता। पानी को हिलते हुए तो उसने कई बार देखा था, मगर वो हौज के किनारे से कभी भी आगे ना जा सका, क्योंकि जो उससे ताकतवर होता वो उससे पहले पानी में कूद जाता। वो खुदगर्ज और तेज दौड़ने वाले लोगों का मुकाबला ना कर सकता था। अब उसकी रही सही ताकत भी जवाब दे रही थी। पस्त हिम्मती ने उसे दबा रखा था। उसे उसका कोई मुदावा नजर ना आता था। ये बीमार शख्स अपनी चटाई पर पड़ा हुआ गर्दन ऊपर उठाकर हौज के पानी को देख रहा था, जबकि एक मेहरबान शख्स ने झुककर उससे पूछा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? इन अल्फाज ने उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कर लिया। बीमारी में उम्मीद की किरण जल्द फूट पड़ी। उसने समझ लिया ये जरूर कोई गैबी मदद है। मगर उसकी उम्मीद की किरण ये सोचकर जल्द बुझ गई कि मैंने किनारे पर पहुंचने के लिए कई बार कोशिश कर देखी है और अब न जाने कब पानी हिले। इसलिए वो बड़ा दुखी होकर मसीह की तरफ देखकर कहने लगा, ए खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु मसीह ने उस बीमार को ये ना कहा कि पहले तो मुझ पर ईमान ला तो तू शिफा पाएगा, बल्कि फरमाया, उठ और अपने चारपाई उठाकर चल फिर। जो कुछ यीशु में फरमाया था बीमार ने उसका यकीन किया। उसकी मुर्दा नसों और पिट्ठों में नई कुव्वत आ गई। उस अपाहज का अंग अंग सेहतयाब हो गया। उसके आज़ा में नई जिंदगी आ गई। बगैर किसी उज्र के उस बीमार ने मसीह के हुक्म को माना और अपने बिस्तर से छलांग मारकर उठ खड़ा हुआ। मसीह ने उसे किसी इलाही मदद की यकीन दहानी नहीं कराई थी। बीमार शक में पड़कर आखिरी मौका भी खो सकता था, मगर उसने मसीह के कलाम का यकीन किया और उसके हुक्म की ताबेदारी में उसने ताकत पाई। इसी ईमान के जरिए हम भी रूहानी शिफा पा सकते हैं। गुनाह के बायस हमसे अबदी जिंदगी छिन चुकी है, हमारी रूहें लाचार और अपाहज हो गई हैं। हम बजाते खुद आबे हयात जिंदगी बसर नहीं कर सकते। हम इसी तरह बेचैन हैं जैसे ये बीमार शख्स। बहुतेरे अपनी बेबसी का इकरार करते हैं और उनकी दिली तमन्ना है कि वो खुदा के साथ हम आहंग हो जाएं। वो बेसूद कोशिश में मसरूफ हैं और आखिरकार चला उठते हैं। हाय, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, उस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। रोमियो 24:7। ऐसे खस्ता हालों बेबसों को यीशु की तरफ तकना चाहिए। मसीह यीशु, जिसने अपने खून से सबको खरीद रखा है, वही अपनी मोहब्बत भरी जबान से पूछता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? वो आपको कह रहा है कि सेहत और अमन पाए और उठ खड़े हों। शिफा पा जाने के इंतजार में ना रहें, उसके कलाम का यकीन करें, तू आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। अपने मर्जी यीशु के ताबे कर दें और जब आप उसका हुक्म मानेंगे तो आप जरूर सेहत और तवानाई पाएंगे। अगर आप उसका हुक्म मानेंगे तो फिर खाक किसी किस्म की बुराई ने आपके बदन और रूह को जकड़ रखा हो, उसके नाम से दफा हो जाएगी। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। इफ़सियों 1:2। वो उन तमाम असीरों को रिहाई देगा जो गुनाह की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जब शिफा याफ्ता अपाहज गदड़ी उठाने को झुका और फिर खुशी से सीधा हुआ ताकि अपने मुरब्बी का शुक्रिया अदा करे, तो यीशु मसीह भीड़ में इधर उधर हो गया। तंदुरुस्ती पाने वाले शख्स को सख्त अफसोस हुआ। खास तौर पर इस बात का उसे दुख था कि जब तबीबे आजम को कहीं देखेगा तो शायद पहचान भी ना सकेगा। ताहम वो खुदा की तमहीद करता हुआ भागा जा रहा था। उसे रास्ते में कई फरीसी मिले। उसने अपनी तंदुरुस्ती का तमाम माजरा उनको सुनाया, मगर वो इस बात पर हैरान हुआ कि उन्होंने उसकी कहानी बड़ी बेरुखी से सुना। गोया उनके लिए ये कहानी किसी अहमियत की हामिल नहीं। उसके साथ खुशी मनाने की बजाय वो उसे पूछने लगे कि तूने क्यों अपना बिस्तर उठा रखा है? आज सबत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। वो शख्स जानता था कि सबत के दिन किसी तरह का बोझ उठाना रवा नहीं, मगर वो अपने खुशी में ये भी भूल गया कि आज सबत का दिन है। ताहम उसने खुद वो उसका हुक्म मानने पर मुजरिम ना गर्दाना जिसमें खुदावन की हैरत अंगेज कुदरत पाई जाती थी। चुनाचे उसने बड़ी दलेरी से उन्हें जवाब में कहा, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। यूहन्ना 11:5। उन्होंने फिर उससे पूछा, वो कौन शख्स है? लेकिन वो शिफा पा गया था। वो ना जानता था कि कौन है। बेशक ये लोग जानते थे कि वो कौन है जिससे ये मौजजा सरजद हुआ है, मगर वो बतौर सबूत चाहते थे कि ये शख्स बताए कि ये यीशु था जिसने उसे सबत के दिन शिफा दी है, ताकि वो यीशु पर सबत तोड़ने का इल्ज़ाम सादिर कर सकें, क्योंकि उनके नज़दीक सबत को चारपाई उठाना सबत की बेहुरमती करने के मुतरादिफ था। यहूदियों ने शरीयत को इतना दरहम बढ़म कर दिया था कि शरीयत लोगों पर भारी जवाब बन गई। यहूदियों के बेसूद मुतालिबात गैर अकवाम में मज़े का खेज हैसियत अख्तियार कर चुके थे, खास तौर पर सबत की पाबंदियां जो उन्होंने खुद आयत कर रखी थीं, उनका कोई जवाज़ न था। सबत खुदा का मुअज़्ज़म और मुकद्दस और खुशी का दिन ना रहा था। फकीहियों और फरीसों ने इसे नागवार बोझ बना रखा था। यहां तक कि एक यहूदी सबत के दिन दिया या मोमबत्ती रोशन करने का भी मजाज न था। बस यहूदियों को बुत परस्तों और गैर अकवाम पर इन कामों के लिए इन्हसार करना पड़ता था, जिनको उनके हाकिमों ने सबत के दिन अंजाम देने से मना कर रखा था। जो काम यहूदियों को सबत के दिन करना रवा न था वो गैर कौमें उनके लिए करती थीं। मगर वो ये नहीं समझते थे कि अगर ये या वो काम करना यहूदियों के लिए सबत के दिन करना नारवा है, वो जिनको के काम करने को कहा जाता है क्या उनके लिए रवा है? जब बुतपरस्त यहूदियों के किए सबत के दिन कोई काम अंजाम देते तो असल में खुदा की नज़र में यहूदी गुनाहगार ठुड़ते। यहूदियों का ये ख्याल था कि नजात सिर्फ उन्हीं के लिए है, दूसरी कौमें तो पहले ही नजात से बेदखल हैं, और अगर वो हमारे लिए सबत के दिन कोई नारवा काम करेंगे तो सिर्फ ये होगा कि उनके किए नजात के सारे राते मजदूद हो जाएंगे, यानी उनकी नजात का मामला सिर्फ बद से बदतर होगा। मगर याद रहे कि खुदा ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दे रखा जो दूसरी कौमों के लिए मानना नामुमकिन था। जो शख्स तंदुरुस्त हो गया था उसको येसु हैकल में मिला। वो हैकल में खुदावन की कमाल रहमत की शुक्रगुजारी का नजराना लेकर पेश हुआ था। खुदावन ने उसे हैकल में दूसरे इबादत गुजारों के साथ देखकर खुद को उस पर आश्कार कर दिया कि देख, तो तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर उससे भी ज्यादा आफत आए। यूहन्ना 14:5। अपने नजात दहिंदा को मिलकर ये शख्स निहायत शादमान हुआ। फरीसियों की दुश्मनी से बेखबर होते हुए उसने उन्हें बताया, ये है वो शख्स जिसने मुझे शिफा दी। इसलिए यहूदी यसू को सताने लगे क्योंकि वो उसे काम सबत के दिन करता था। यूहन्ना 16:5। यसु मसीह को सनहीद्रन नेशनल काउंसिल के सामने पेश किया गया ताकि सबत को तोड़ने का जवाब दे। अगर यहूदी उस वक्त खुद मुख्तार होते तो वो यसु को जरूर मौत के घाट उतार देते, मगर वो ऐसा न कर सके क्योंकि वो रूमी हकूमत की अमलदारी में थे, और रूमी अदालत में जो इल्जाम यहूदियों ने मसीह पर लगाया था वो कोई संगीन इल्जामात में से न था। असल में यहूदियों को ये शिकायत थी कि मसीह का असर व रसूख यरूशलम में हमसे ज्यादा क्यों है। अवान जो रब्बियों की तालीम और खुतबजात से मुतासिर न थे, उन पर यसु की तालीम का बहुत असर हुआ था। वो न सिर्फ उसकी तालीम को बखूबी समझते बल्कि उनके दिलों को उसकी तालीम से तसल्ली और इत्मीनान हासिल होता। वो बताता कि खुदा मेहरबान बाप है और अपने जिंदगी से खुदा की खूबियां बचौर नमूना सबके सामने पेश करता। खुदा की शबी उसमें ऐसे नजर आती जैसे आईना में किसी का अक्स नजर आया है। जख्मी रूहों के लिए उसका कलाम मरहम की मानिंद होता। अपनी रहमत के काम और कलाम से वो पुरानी रिवायात की कुव्वत को तोड़ता और कचले हों को सहारा देता। दीगर वो उन जाब्तों को बातिल ठहराता जो इंसानों ने बना रखे थे, और खुदा की बेनहायत मोहब्बत को खुदा के बच्चों पर जाहिर करता। कदीम पेशनगोई में उसके बारे यूं बयान था, यहूदा से सल्तनत नहीं छोटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा जब तक शल्लुआ ना आएगा और कौमें उसके मती होंगी। पैदाइश 10:49। लोग यीशु मसीह के आसपास जमा होते जाते थे। लोगों ने खुदा की मोहब्बत और फलाह व बहबूद की तालीम जो मसीह पेश करता था उसे कबूल किया, और यीशु की तालीम को काहनों की बेलोच और सख्तगीर तालीम पर तरजीह दी। अगर रब्बी और काहन इस तालीम की मुखालफत ना करने तो उसकी तालीम ऐसी इसलाह लाती जो दुनिया ने उससे पहले कभी ना देखी थी। मगर अपनी जाह हशमत के भूखे काहनों ने मसीह के असर व रसूख को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की। उनका ख्याल था कि नेशनल काउंसिल के सामने मसीह पर तोहमत और उसकी तालीम पर नुक्ताचीनी जरूर उसकी इज्जत और हुरमत में कमी का बायस होगी। वो समझते थे कि अवाम के दिल में अभी तक उनके मजहबी रहनुमाओं का बड़ा एहतराम है। कौन रब्बियों की तालीम और मुतालिबात की मुखालफत करने की जुरत कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना तो कुफ्र के बराबर गुना जाता था। लिहाजा उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया कि ये हमारी मुकर्रर करदा रसूम को मनसूख करने की तालीम देता। ये मंसूबा जो रब्बी बड़े जोशो खरोश से तैयार कर रहे था, सनहिदरन के अलावा उसकी बुनियाद किसी और काउंसिल में रखी गई थी। बयाबान में मसीह पर गलबा ना पाने के बाद इबलीस ने अपनी फौजें मसीह की खिदमत में रुकावट डालने के लिए तैयार की। वो मकसद जो वो खुद हासिल न कर सका, वो उसने किसी दूसरे के जरिए हासिल करना चाहा। बयाबान से वापसी पर उसने फौरन यहूदियों के जहनों को तारीक करना शुरू कर दिया, ताकि वो अपने निजात दहिंदा को ना पहचान सकें। वो सदाकत के शहजादे के खिलाफ दुनियावी वसाइल बरुए कार लाया। उसने यहूदियों के जरिए कोशिश की कि उसकी जिंदगी को तल्ख से तल्ख कर दे और उसे इतना पस्त हिम्मत कर दे कि वो अपने मिशन में नाकाम हो जाए। बस इसराइली कयादत मसीह के खिलाफ इबलीस के हाथ में आलाकार बन गई। मसीह तो शरीयत को उजागर करने आया था। खुदावंद को पसंद आया कि अपनी सदाकत की खातिर शरीयत को बुजुर्गी दे और उसे काबिल ताजीम बनाए। वो रास्ती से अदालत करे का वो मानदा न होगा और हिम्मत न हारे का जब तक के अदालत को जमीन पर कायम न कर ले। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करे। यसैया 4:42-21। वो सबत को उन बंधनों और नागवार मुतालिबात से आजाद करने आया जो बरकत की बजाय लानत का सबब बन चुके थे। इसी वजह से बैते हसदा के हौज पर उसने सबत की दिन शिफा का अमल करने का इंतखाब किया। हो मरीज को हफ्ता के किसी दूसरे दिन भी शिफा दे सकता था, या फिर वो उसे वैसे ही शिफा दे देता, मगर चारपाई उठाने का हुक्म न करता, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए मुमकिन था, लेकिन उससे जो कुछ वो सिखाना चाहता था न सिखा सकता। उसके हर फेल में कोई न कोई हिकमत पाई जाती थी। बैते हसदा के हौज पर उसने सख्त तरीन बीमार मरीज को बचाया और फिर उसे फरमाया कि अपने चारपाई उठाता कि शहर में उस बड़े मौजजे का चर्चा हो सके। उसे मालूम था कि लोग पूछेंगे कि आया सबत के दिन चारपाई उठाना रवा है कि नहीं। यूं वो सबत के बारे सही तालीम दे सकेगा और खुदावंद के दिन पर यहूदियों ने जो पाबंदियां आयत कर रखी हैं उनसे छुटकारा दिलाए। मसीह ने उन्हीं बताया कि दुखियों को खलासी दिलाना बिल्कुल सबत की शरीयत के हम आहंग है, बल्कि ये खुदा के फरिश्तों की खिदमत से भी मुताबिकत रखता है जो लगातार आसमान में आते जाते रहते हैं ताकि दुखियों को तसल्ली दे। येसु ने उन्हें समझाया कि बाप अब तक काम करता है और मैं भी कार्य करता हूं। यूहन्ना 17:5। सब दिन खुदावंद के हैं जिनमें हमें उसके मंसूबे को जो उसने बनी नौ इंसान के लिए बनाया है पूरा करना है। अगर यहूदियों की तफसीर दुरुस्त होती तो वो कसूरवार ठुड़ता जिसने तख्लीक के वक्त से ही हर चीज में जिंदगी डाली जो जमीन पर है, बल्कि उसने उन तमाम चीजों को देखकर कहा कि अच्छा है और सबत को तख्लीक की याद में कायम किया। अगर खुदा सूरज को हुक्म करता को सबत के दिन अपना काम बंद कर दे, जमीन को ना गर्मा और ना ही सब्जियात की नश्वोनुमा में मदद कर, अगर दुनिया का तमाम कारोबार मुकद्दस दिन पर साकिन हो जाता, चश्मे बहना बंद हो जाते, खेतों और जंगलों को पानी ना पहुंचाते और समंदर साकिन हो जाता, अनाज की फसलों की नश्वोनुमा रुक जाती और फाल पकने से रो जाते, पौधे और दरख्त कोई कौंपल ना निकालते और सबत के दिन कोई फूल ना खुलता, तो इस सूरत हाल में इंसान जमिया के फलों, फूलों और अपनी दूसरी दिलपसंद चीजों से महरूम रह जाता। फितरत को अपना काम जारी रखना था। खुदा अपना हाथ एक लम्हा के लिए भी नहीं रोक सकता, वरना इंसान तबाह हो जाए। इसी तरह सबत के दिन पर भी खुदा ने इंसानों के करने के लिए काम रख छोड़े हैं। जरूरियात जिंदगी के अलावा बीमारों की तैमारदारी लाजिम है। सबत के दिन हाजतमंदों की हाजत रवा करना है। वो जो सबत के दिन किसी मुसीबत ज़दा की मदद नहीं करता, वो बेकसूर न ठहरेगा। खुदा का पाक दिन इंसान के आराम के लिए बनाया गया और खुदा चाहता है कि हम अमन और सलामती के काम सबत के दिन जरूर किए जाएं। सबत के दिन अगर किसी को आराम पहुंचाया जा सकता है तो जरूर पहुंचाए। खुदा की मर्जी ये नहीं है कि किसी को सबत की वजह से एक या दो घंटा के लिए भी तकलीफ हो। अगर आप ये तकलीफ सबत के दिन रफा कर सकते हैं तो दरेग न करें। दूसरे दिनों की जस्बत। सबत के दिन पर खुदा के मुतालिबात ज्यादा हैं। इसके लोग सबत के दिन आम कारोबार से मुंह मोड़कर ज्यादातर वक्त खुदा की इबादत और ज्ञान ध्यान में गुजारते हैं। दूसरे दिनों की निस्बत वो खुदा की हिमायत के ज्यादा तलबगार होते हैं। वो उसकी बरकात की दरख्वास्त करते हैं اور خدا اپنے بچوں کو یہ تمام برکات دینے کے لیے سبت کے گزر جانے کا انتظار نہیں کرتا۔ آسمان بھی اپنے کام کو بند نہیں کرتا۔ اسی طرح انسانوں کو بھی بھلائی کے کاموں سے ہاتھ نہیں روکنا چاہیے۔ سبت کا وقت بیکار نہ گزارنا چاہیے۔ عام کاروبار سے ہاتھ روکا جائے، اپنی خوشیوں کے طالب نہ ہوں، بلکہ جیسے خدا نے سبت کے دن آرام کیا اس کے نمونہ کو اپنایا جائے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیماروں کو شفا دینے کا عمل عین سبت کی روح ہے۔ ایسے کاموں سے سبت کی بزرگی ہوتی ہے۔ یسوع مسیح اسی طرح کے پاک اور مقدس کام سبت کے دن انجام دیتا تھا جو آسمان پر خدا دے رہا ہے۔ فریسی تو مسیح پر یہ الزام بھی لگاتے تھے کہ وہ نہ صرف سبت کو توڑتا ہے بلکہ خدا کو اپنا باپ بھی کہتا ہے، اور اس پر طرح یہ کہ خود کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے۔ ساری یہودی قوم خدا کو اپنا باپ مانتی تھی، اور اگر مسیح نے خدا کو اپنا باپ کہا تو اس پر انہیں برہم ہونے کی ضرورت نہ تھی، مگر انہوں نے اس کی بارے کہا کہ وہ کفر بکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جس لحاظ سے ہم خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں وہ اس طرح نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ فریسی یہ تو خوب سمجھ گئے کہ سبت کے بارے سچائی کیا ہے، مگر وہ لوگوں کو یہ کہہ کر ابھارنے لگے کہ یہ خود کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے۔ اگر انہیں بھیڑ کا خوف نہ ہوتا تو وہ ضرور مسیح کو اسی وقت قتل کر دیتے۔ یسوع عوام میں بڑا ہر دل عزیز تھا، کیونکہ اس نے بازوں کو شفا بخشی تھی، بہتوں کو ان کے دکھوں سے رہائی اور غموں میں دلاسا دیا۔ ان کے سامنے بیت حسدہ کا معجزہ بھی تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا دے کر سبت کی بالکل بے حرمتی نہیں کی، اس لیے وقت کے حاکم اس کے خلاف کچھ کرنے سے باز رہے۔ مسیح یسوع نے ان کے اس سوال کا کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہہ کر کفر بکتا ہے یہ جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ یوحنا 19:5۔ یہودیوں نے تو اپنے گناہوں کے سبب سے خود کو خدا سے جدا کر لیا تھا، اور اب وہ سوچتے تھے کہ وہ بذات خود سب کچھ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ خداون کی حکمت کو حاصل کرنے کی بالکل ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ مسیح یسوع تو ان کے برعکس تھا۔ اس نے اپنے لیے کوئی تجویز نہ بنائی، بلکہ اس نے خود کو خالی کر دیا اور خدا کی تجویز کو قبول کیا جو وہ ہر روز اس کے لیے تیار کرتا تھا۔ اسی طرح ہمیں بھی خدا کی تجاویز پر عمل پیرا ہونا چاہیے جو وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں اس کی مرضی پوری ہو۔ جب موسیٰ خدا کے رہنے کا گھر بنانے کو تھا تو خدا نے اس کو آسمان سے نمونہ دیا تاکہ اس کے مطابق بنائے۔ موسیٰ نے پورے جوش و خروش سے کام کرنے کا عہد کیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے ماہر لوگ موجود تھے۔ خدا نے اسے اپنے جلال میں چھپا کر وہ تمام چیزیں دکھائیں جو بنانی درکار تھیں، مثلاً گھنٹیاں، انار، جھنجری، شمدان، سرپوش، میخیں، پیالیاں، لٹو اور پھول وغیرہ، اور یہ سب کچھ اس نمونہ کے مطابق تھا جو خدا نے موسیٰ کو آسمان پر سے دکھایا۔ اسی طرح جب شریعت دی گئی اس وقت بھی خدا ون موسیٰ کے سامنے سے گزرا اور اپنانی سیرت سے اسے آگاہ کیا، اور یس کے آگے سے یہ پکارتا ہو گزرا، خداوند خداوند، خدا ہی مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی،
ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا۔ لیکن وہ مجرم کو ہر گز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ خروج 6:34-7۔ بنی اسرائیل نے اپنی راہیں اعتیار کر لی تھیں، انہوں نے خدا کے نمونہ پر اپنی زندگیاں تعمیر نہ کیں، مگر مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی کے دوران خدا کی مثالی زندگی کو اپنایا۔ اے میرے خدا، میری خوشی میں تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن ہو۔ جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں، چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسا کے مطابق سب چیزیں بنانا، اور تم اسی لیے بلاتے گئے ہو کیونکہ مسیح نے بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ زبور 8:40، افسیوں 22:2، عبرانیوں 5:8، پطرس 21:2۔ مسیح کے کلام سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہم آسمانی خدا کے ساتھ منسلک ہیں، خواہ ہم کچھ بھی کیوں نہ ہوں، ہمارا انحصار خداوند پر ہی ہے کیونکہ اسی کے ہاتھ میں ہمارا سب کچھ ہے۔ اس نے ہی ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے، اور جو کام ہم کرتے ہیں اس کو انجام دینے کی صلاحیت بھی وہی میں عطا کرتا ہے۔ بس جب تک ہم اپنی مرضی کو اس کے مطیع کرتے اور اس کی حکمت کے متلاشی رہتے ہیں تو وہ ہمیں اس صراط مستقیم پر ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے، جو محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عظیم تجویز کے عین مطابق ہے۔ مگر وہ تمام لوگ جو اپنی حکمت اور طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں وہ خود کو خدا سے جدا کر لیتے ہیں، پھر وہ خدا کی بجائے خدا کے دشمن یعنی ابلیس کے مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا، جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ یوحنا 21:5۔ صدوقی کہتے تھے کہ مردوں کی قیادت نہیں، مگر مسیح نے تعلیم دی کہ خدا کا ایک عظیم کام یہ ہے کہ وہ روز آخر مردوں کو زندہ کرے گا۔ مسیح نے فرمایا کہ وہ وقت آتا ہے جب مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے زندہ کیے جائیں گے۔ فریسی مردوں کی قیامت میں ایمان رکھتے تھے، مگر یسوع نے فرمایا وہ قدرت اور وقت اب بھی ہے، جو اس کی آواز سنتے ہیں زندگی پائیں گے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے۔ افسیوں 1:2۔ وہی زندگی کی روح مسیح میں موجود ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ فلپیوں 10:3، رومیوں 2:8، ابلیس کی حکمرانی ختم ہو گئی اور ایمان کے ذریعے روح گناہ کے جال سے آزاد ہو گئی۔ وہ جو اپنا دل روح کو حاصل کرنے کے لیے کھولتے ہیں انہیں قبر پر فتح پانے کی قوت نصیب ہوتی ہے۔ مسیح نے خود کو اتنا حلیم کیا کہ وہ جو خدا کے ساتھ تخلیق میں شامل تھا انسان بناتا کہ ہمیں گناہ کی شرمندگی سے چھڑا لے۔ وہ فرشتوں سے برتر اور خدا کا بیٹا تھا، اس لیے اس کے سامعین کے دل میں اس کا کلام اتر جاتا، کیونکہ جس طرح وہ کلام کرتا کوئی انسان نہ کر سکتا تھا۔ اس کا کلام سادہ اور پر مغز ہوتا، جس سے اس کے مشن کی پوری پوری عکاسی ہوتی، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ اس کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ یوحنا 22:5-24۔ سرداروں نے سوچا کہ وہ مسیح کے کام کی عدالت کریں گے، مگر مسیح نے اعلانہ کہا کہ میں دنیا کی عدالت کا اختیار رکھتا ہوں جس میں تم بھی شامل ہو۔ تمام دنیا مسیح کو دی گئی ہے، اور اسی کے ذریعہ دنیا کو تمام برکات حاصل ہوتی ہیں۔ وہ اپنے مجسم ہونے سے پہلے بھی دنیا کا جنات دہندہ تھا اور اب بھی ہے، یعنی گناہ ہونے سے پہلے نجات دہندہ موجود تھا۔ اس نے سب کو زندگی اور روشنی دی ہے، اور جتنی کسی کو روشنی پہنچی ہے اسی کے مطابق اس کی عدالت ہوگی۔ وہ سچا اور میانی ہے اور گناہ سے چھڑانے کے لیے ہر وقت تیار۔ جب سے آسمان پر کشمکش شروع، اسی وقت سے مسیح دنیا کو ابلیس کے منصوبوں اور چالاکیوں سے آگاہ کرنے کے علاوہ اس کے چنگل سے چھڑا رہا ہے۔ خدا نے اسے عدالت کا ہتھیار بھی دیا ہے کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور چونکہ وہ انسانی آزمائشوں اور دکھوں سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ جب گناہ انسان کو جکڑ لیتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس لیے وہ ہم انسانوں سے بڑی نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ खुदा ने मसीह को अदालत के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भेजा था, क्योंकि उसने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। यूहन्ना 17:3। बल्कि मसीह ने नेशनल काउंसिल के सामने ऐलानिया कहा, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के उकलूते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। अपने सामईन के लिए उसने मुस्तकबिल के भेदों से पर्दा उठाते हुए फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि उम्रदे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जीएंगे। उस पर ताज्जुब नहीं करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की कयामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी है सजा की कयामत के वास्ते। यूहन्ना 25:5-29। मुस्तकबिल की जिंदगी की इस यकीन दहानी के लिए बनी इसराइल मुद्दत से इंतजार कर रहे थे। नीज उनका कहना था कि मसीह के आने पर उनकी ये उम्मीद पूरी होगी। अब वो रोशनी उन पर चमक रही थी, मगर खुदी ने उन्हें अंधा कर रखा था। मसीह यीशु ने रब्बियों की रिवायात को बुलाए ताक रखकर और उनके एहतियार को बातिल करार दिया, इसलिए वो उसकी बातों का यकीन करना ना चाहते थे। मौका की नज़ाकत और लोगों के रद्दे अमल की वजह से नेशनल काउंसिल मसीह यीशु के कलाम से मजीद मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। मजहबी रहनुमा उसकी जान के दर पर थे। किसने बनी इसराइल की बहाली का ऐलान किया था, और जिसने उन्हें वाज़ह तौर पर कहा कि मैं ही वो हूं जो उन्हें बहाल करने आया हूं। सबत के मालिक को आज जमीनी मजहबी रहनुमाओं को जवाब देना था कि उसने सबत को क्यों तोड़ा। जब उसने फिर बबांग दुहल अपने मिशन का ऐलान किया, तो उसकी अदालत करने वालों ने उस पर हैरानगी से निगाह की, मगर उसे कोई जवाब न दे सके, न ही वो उस पर कोई इल्जाम लगा सके। उसने रब्बियों और काहनों के एहतियार को चैलेंज किया जो उससे जवाब तलबी कर रहे थे, क्योंकि वो उनके एहतियार को नहीं मानता था, इसलिए उसने उनके इल्जामात की भी चंदा परवाना की। मसीह ने जो कुछ किया था उस पर वो हरगिज शर्मसार न था, क्योंकि वो ऐन शरीयत के मुताबिक था। चुनाचे मसीह यीशु ने अपने इल्जाम लगाने वालों यानी सरदारों और काहनों को मुलजिम ठहराया। यूं इल्जाम लगाने वाले खुद मुजरिम बन गए। उसने उनको झरका कि तुम शरीयत और कलाम को नहीं जानते, और तुमने अपने दिलों को सख्त कर रखा है, क्योंकि तुमने खुदा के कलाम और जिसको उसने भेजा है दोनों को रद्द कर दिया है। तुम कलाम मुकद्दस में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। यूहन्ना 39:5। अहदे अतीक की तारीख हो या शरीयत, इसके हर वर्क पर खुदा के बेटे का जलाल दोखा जा सकता है। बल्कि यहूदियों के तमाम निजाम में इंजील की खुशखबरी मौजूद थी। उस शख्स यीशु मसीह की सब नबी गवाही देते थे कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। आमाल 43:10। बल्कि जब से आदम को निजात दहिंदा का वादा चिया गया, उस वक्त से बतदरीज निजात दहिंदा के जाहिर होने की वाज़े निशानियां हर जमाना के आबाई बुजुर्ग व अंबिया को दी गईं। हर कुर्बानी मसीह की मौत की अलामत होती थी। बुखूर के हर धुई से उसकी रास्तबाजी का सूद होता था। बुबली का हर नरसंगा उसके नाम से फूंका जाता था। पाक तरीन मकाम में उसकी हुजूरी होती थी। यहूदियों की अमलदारी में खुदा का कलाम दिया गया था, और वो सोचते थे कि इसका सतही वो जाहिरी इल्म अबदी जिंदगी के लिए काफी है। इसीलिए मसीह ने उन्हें एक मौके पर खबरदार किया, तुम उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, चूंकि तुमने उसके कलाम को रद्द कर दिया है लिहाजा तुमने मुझे रद्द कर दिया है। तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यूहन्ना 40:5। यहूदी कयादत ने मसीह की बादशाही के मुतालिक कलाम पाक से पढ़ रखा था, मगर उन्होंने उसकी जुस्तजू नेक नियति से ना की थी, بلکہ وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اس کی تعبیر کرتے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ان کی توقعات کے برعکس ہوئیں تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ دھوکے باز ہے۔ ان کا اس راہ پر چلنا تھا کہ ابلیس نے ان کے قدموں کو تقویت دی۔ وہ کلام جو اس کے حق میں تھا انہوں نے اس کی الٹ تفسیر کر کے مسیح کے برخلاف استعمال کیا۔ یوں الہی صداقت کو انہوں نے جھوٹ میں بدل دیا، اور جتنا زیادہ مسیح نے اپنے رحم میں ان تک کلام پہنچانے کی کوشش کی اسی قدر زیادہ انہوں نے نور کو رد کرنا چاہا۔ یسوع نے فرمایا، میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، یوحنا 41:5۔ مسیح کو نہ تو نیشنل کونسل کے تحفظ، عزت افزائی اور سرپرستی کی ضرورت تھی، نہ اپنے مشن کی تکمیل
کے لیے ان کی اجازت۔ یہ سب کچھ تو اسے آسمان سے فرشتے آ کر اس کے حکم کو بجا لاتے، حتیٰ کہ باپ خود کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ مگر مسیح یسوع کی دلی تمنا تھی کہ یہودی رہنما خود اس کی سیرت کی پہچان کریں اور ان برکات کو حاصل کریں جو وہ دینے آیا تھا۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے، یوحنا 43:6۔ یسوع مسیح خدا کے نام سے آیا، اس میں خدا کی شبیہ تھی، وہ اس کے کلام کی تکمیل کرنے آیا، وہ اپنے باپ کے جلال کا خواہاں تھا، پھر بھی اسرائیلی رہنماؤں نے اسے قبول نہ کیا کیونکہ وہ خدا سے ناواقف تھے، اور جب مسیح کے ذریعہ خدا نے انہیں بلایا تو یہودی رہنماؤں نے اسے اجنبی خیال کیا۔ کیا یہی کچھ ہمارے زمانے میں دہرایا نہیں جا رہا؟ کیا یہاں بھی ایسے لوگ نہیں بشمول مذہبی رہنماؤں کے جو روح القدس کو قبول کرنے میں اپنا دل سخت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں خدا کی آواز کی بھی پہچان نہیں رہی؟ کیا وہ اپنی روایات کو بخال رکھنے کے لیے خدا کے کلام کو رد تو نہیں کر رہے؟ یسوع مسیح نے فرمایا، اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے، لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے، یوحنا 47:46۔ یہ یسوع ہی تھا جس نے موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل سے کلام کیا تھا۔ اگر وہ اس آواز کو پہچانتے جو ان کے آبا و اجداد سے ہم کلام ہوئی تھی تو وہ مسیح کی تعلیم کو تھی تسلیم کرتے۔ اگر وہ موسیٰ کو مانتے تو وہ اس کو بھی قبول کرتے جس کے بارے موسیٰ نے لکھا تھا۔ مسیح یسوع جانتا تھا کہ خاکم اور کاہن اس کی جان کے در پہ ہیں، پھر بھی اس نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ وہ خدا کے ساتھ ایک ہے۔ بے شک وہ جان گئے تھے کہ ان کے تمام بہانے لغو ہیں، پھر بھی ان کی نفرت اس کے خلاف کم نہ ہوئی، وہ اسے ہر حال قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس کی خدمت کے اثرات سے قائل بھی ہو گئے، پھر بھی جان بوجھ کر خود کو ظلمت کے حوالے کر دیا، جاسوسوں کو بھیجا کہ اس کے قتل کا کوئی بہانہ ڈھونڈے۔ جنات دہندہ ان حالات کے تحت یقینی طور پر صلیب کے سایہ تلے کھڑا تھا۔